कुछ उलमा के अकवाल को भी देखिएगा, इन्होंने लिखा कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने खौफ और उम्मीद को किस तरह से पेश किया, किसी पे खौफ गालिब था तो किसी पे उम्मीद गालिब थी, किसी ने एक को दूसरी तरफ किया। ये मैं पढ़ ही देती हूँ, खुद ही समझ लें। लिखते हैं कि बाज़ अहले इल्म के अकवाल गुजरे हैं जिनमें बाज़ अहले इल्म ने खौफ के पहलू को उम्मीद और रिजा के पहलू पर फौकियत दी, बाज़ उलमा जिन्होंने उम्मीद को खौफ के ऊपर गालिब करार दिया। दर हकीकत ये मामूली और नस्बी तरजीह है जिसे कोई अहमियत नहीं दी गई। ये इस किस्म की तरजीह नहीं जैसा कि गुमराह और बेदती फिरकों का शियार है। ये दोनों कॉल जिसके ऊपर बात है, इसके अंदर से वो कहते हैं कि जिन्हें मुश्किल लफ्ज़ हैं आसान कर देती हूँ, कि दुनिया में जब आप अल्लाह के रास्ते में आते हैं ना, तो ये नहीं आप कह सकते कि आप अकीदे में पीछे हो जाएं, सुन्नतों के मामले में बिदात की तरफ आ जाएं, अपना अल्लाह तआला से मामला सीधा रखें, उसमें खौफ और उम्मीद की कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने अल्लाह से ताल्लुक की तरफ आते हैं ना, तो उसमें ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी को आगे से आगे लेकर चलेंगी। इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि सलाफ में से सालेहीन ने इस सिलसिले में क्या मौकफ रखा, उनका मौकफ दो चंद हो जाता है जब एक दूसरे पर सबकत का मौका आता, तो इस मसले में वो मुख्तलिफ किस्मों में बट जाते। बाज़ लोगों को कुलक और इज़तराब लाहक हो जाता, बाज़ इज़तराब का शिकार होते, कहते मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है, अगर अल्लाह ने मुझे बख्शिश और अफ़ो दरगुजर से ना नवाजा जिसकी पादाश में या तो मैं जहन्नुम में जाऊंगा या कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, और ये और बात है। कुछ लोग हैं जिन्हें मायूस हो जाते थे इल्म के बावजूद भी, कुछ ऐसे थे जिनको उम्मीद का सहारा होता, जैसे हजरत बिलाल हबशी का वाक्य। इनकी बीवी इनकी वफात के मौके पर जब कहती हैं कि हाय अफसोस, हाय मेरा रंजो गम और मेरी मुसीबत, तो सैयदना बिलाल फरमाते हैं मेरे कैफो सरूर का क्या कहना, कल मैं अपने दोस्त अहबाब से मिलूंगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अस्हाब से इस दारे फानी से कूच करने के बाद कल मेरी मुलाकात होगी। समझ गए, जब दुनिया से कोई जाता है तो हम अपने पे रो रहे होते हैं, असल में इसके जाने के बाद हमारा क्या बनेगा, ये नहीं सोचते कितनी बीमारियों से अल्लाह ने उसको जान छुड़ा दी, कितने दुखों से कटा, उसके लिए तो आगे के रास्ते हैं। इसी तरह से एक तीसरा कॉल किया कि ना तो खौफ का पहलू उम्मीद के पहलू पर गालिब हो और ना उम्मीद का पहलू खौफ पर गालिब आए। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ इस्तिस्नाई कंडीशंस हैं कि जिसके एतबार से आप देख सकते हैं, आइए जरा इसको देखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जहां हमसे खौफ और उम्मीद की हालत में तैयार रहते हुए जिंदगी गुजारने का मुतालबा किया, वहां इसके लिए चंद असबाब और वसाइल भी दिए हैं जो कि इस राह में मददगार साबित होते हैं। इन्हीं असबाब और वसाइल में अहम तरीन सबब उम्मीदो बीम की कैफियत या इसकी हालत का मख्फी होना है। हाईलाइट कीजिएगा इसको, यानी उम्मीद कहाँ है, दिल में छुपी हुई है। ये क्यों है? ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि इसके आमाल का खात्मा किस बुनियाद पर हुआ है, जिसकी बुनियाद पर लोग पूरी जिंदगी उम्मीदो बीम की हालत में सर्फ कर दें। यही वो राज है जो उम्मीदो बीम की कैफियत में छुपी हुई हालत में मौजूद है। अपने लफ्जों में बता देती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारा असल हाल लोगों तक नहीं रखा, उम्मीद दिल में है ना, आपको तो नहीं पता मुझे कितनी उम्मीदें हैं। कोई दुनिया से जब जाता है ना, तो हमें उसके असल कैफियत नहीं पता चलती, क्यों? ताकि मरने के बाद लोग उसके नाम पर कोई फतवा ना दे दें कि ये बंदा सीधा जहन्नमी है या सीधा जन्नती है, ये इससे मुराद है। यानी ये अल्लाह ने एक राज रखा है ताकि दूसरे लोग उसको ज्यादा तौर से ना जान सके। इमाम इब्ने बिताल कहते हैं बंदे से अमल के खात्मे के मामले में पोशीदगी में बड़ी हिकमत बन है, यानी मुझे और आपको नहीं पता कि मेरा खात्मा क्या होगा, तो इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, क्योंकि अगर बंदे को इस बात का इल्म हो जाए कि इसको कामयाबी और निजात की गारंटी मिल गई, तो गुरूर और तकब्बुर में मुबतला होकर सुस्ती और काहली का शिकार हो जाए। ऐसे ही है ना, कितने लोग हैं जो लंबे रोजे रखे हैं, अगर पहले से ही पता हो कि तुम अशरे मुबशरा में आ गए, हमें तो अभी यकीन भी नहीं है कि हम जन्नती होंगे तो हम ढीले हैं। मैं सोची ये तो सहाबा का ईमान था कि जन्नती होने का लफ्ज सुनकर भी वो नेकियों में भागते थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज के बाद उस्मान कोई नेकी ना भी करे तो जन्नती है, तो क्या उस्मान रुक गए उसके बाद? नहीं रुके। ये बता रहे हैं कि आम लोगों को अगर पहले पता, मैं मुझे आपको पता लग जाए कि अल्लाह ने हमें माफ कर देना, जन्नत मिलनी, तो इस वक्त हम कहाँ होते? यहाँ थोड़ी होते, हम कहते बख्शे तो जा नहीं, चलो अब कहाँ, वो तो हो गया ना, अब कुछ और करते हैं। रमजान के बाद कई लोग ये फतवा ले आते हैं अपने दिल में, बख्शे गए अब कुछ और भी कर लो, एक महीना तक तो क्लासों में आते ही नहीं है। तो बात का खुलासा है कि अल्लाह ने हमारा अंजाम छुपा कर हम पे एहसान किया। इसी तरह अपोजिट देखें जरा, अल्लाह ना करे हम में से किसी को बताओ कि एक चक्कर तो जहन्नुम का लगाना है, तो क्या हम नेकी करेंगे दुनिया में? हम कहेंगे जब जाना ही आग में तो फिर नेकियां करने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह चाहता है कि हम खौफ में रहें। बाज़ उलमा ने यहाँ एक लतीफा बयान किया, सूरज ग्रहण होने में भी इस बात की तरफ लतीफ इशारा है कि बंदे को चाहिए कि वो उम्मीदों बीम को अपनी जिंदगी का लाजिमा बनाए। यानी सूरज हमेशा चमकता है तो कभी कभी उसको ग्रहण लग जाता है, यही है। आप हमेशा पूरा उम्मीद रहें लेकिन कभी खौफजदा भी रहें। इमाम इब्ने हजर कहते हैं कि सूरज ग्रहण के वकूअ की मुतनविमिन बहुत सारी बहुत सारी हिकमतों में एक हिकमत लोगों को उम्मीद का रास्ता इख्तियार करने की तरफ रहनुमाई के फरीजे की अंजामदही भी है कि किस तरह सूरज ग्रहण मदार में चक्कर काटने वाले सियारे के मुतासिर होने की वजह से हुआ करता है, फिर खुद ब खुद असर जायल भी होता है, ताकि मोमिन के दिल में अल्लाह की जात से उम्मीद और बीम की कैफियत पैदा हो और इसको सूरज की वजह से इस राह पर गामजन रहने की मौका मिले। खुलासा के कायनात में अल्लाह ताला ने निशानी है, जैसे अभी शुरू में हम बात कर रहे थे ना, दरख्तों के पत्ते उतरते हैं फिर लग भी जाते हैं, तो कायनात मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा एक उस्ताद है कि जैसे सूरज हमेशा चमकता है तो कभी काला भी हो जाता है, तो चमकता ही रहता तो सिर्फ उम्मीद थी, काला हुआ तो ये खौफ है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक छोटा सा सितारा सूरज के बीच में आया ना तो उसकी रोशनी मंद पड़ गई तो ग्रहण लग गया। ये तो जानते हैं ना, सूरज चांद और जमीन ये तीनों की सिचुएशन बदलती है तो ग्रहण लग जाता है, यही बताया जा रहा है। सूरज की चमक एक छोटे से सितारे के बीच में आने में जब अंधेरे में बदल गई तो एक इंसान और रब के बीच में कोई दूसरी चीज आ जाती है तो फिर ग्रहण क्यों ना लगे शख्सियत को, ये मुराद है इससे। तो इस सारी मिसाल में हमारे लिए यही बात है कि अल्लाह ताला कुदरत रखता है, उम्मीद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इमाम मनावी का एक कौल है, सलामती और निजात का रास्ता दो शाहराहों के दरमियान में से गुजरता है, अमनो आतशी का रास्ता और मायूसी और नाउमीदी की शाहराह और उम्मीद और बीम की शाहराह, दोनों रस्तों के दरमियान तवाजन बरकरार रखने वाली हैसियत है। जब उम्मीद का पहलू जरा दबने लगे तो सलामती और निजात की गाड़ी खौफ की डगर पर चलती है। यानी आप इमेजिन करें ना, दो रोड साथ साथ चल रही हैं, एक रास्ता जरा सा ब्लॉक होता है ना तो गाड़ी वाला उधर से निकाल के दूसरी रोड पे आ जाता है, कई लेन्स होती है ना, इस तरह आप इमेजिन करें। फिर कभी खौफ की कमी दिखे तो वो वहां से निकल अमर अमान भी आता है। सारी बात को आप पढ़ के देख लें, इसमें से निकलेगा यही कि ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की नाम है। आप अपना काम करते रहें, खौफ भी हो कि पता नहीं कबूल होना कि नहीं, लेकिन उम्मीद भी हो तो कबूल होगा। मुझे ऐसे लगता है कि बंदा जब अपने ऊपर देखे, अपने करतूत देखे, अपनी कमी देखे तो खौफ ज़दा हो। ये जुमला लिखें आपको फायदा होगा, अपने हाल को देखे बंदा तो खौफ ज़दा हो कि मैं गंदी, मैं खराब, मैं कमजोर, मैं सुस्त, मैं ना शुक्री ना फरमान, जो भी अपने साथ लगा ले तो खौफ ज़दा हो, लेकिन जब रब के कमाल को देखे तो पुर उम्मीद हो जाए कि तेरी शान बड़ी आला, तेरे होते हुए मुझे किसी गम की फिक्र नहीं है। इसी तरह इमाम मावर्दी ने भी एक मिसाल दी है, कहते हैं कि उम्मीदों बीम में से दोनों पहलू मरस के लिए अक्सीर की हैसियत रखते हैं। इन दोनों चीजों को दवा के तौर पर तशखीस किया गया, यानी डॉक्टर कहता है कि ये भी खाओ तो वो भी खाओ, लेकिन दोनों को मुतजाद आदतों वाले मरीजों पर आजमाने के लिए पेश किया जाता है। अब ये डॉक्टर की हिकमत है कि वो देखे कि कौन सी दवा किस मरीज पे काम आएगी। अगर तबीब जाहिल और खाइन है तो इसकी डायग्नोस यानी तशखीस का कोई भरोसा नहीं, वो दवा का नुस्खा बनाने में खयानत का मुजाहरा करे तो मनमानी करे। क्या पता चला, इसको अपने तौर पे समझिए कि बास लोग उम्मीद के रास्ते रब तक जाते हैं और बास खौफ के। डॉक्टर को पता होता है कि ये दवा किस किस्म की तबीयत रखने वाले पे काम करेगी। इसी तरह से अल्लाह सुबहान तआला ने लोगों को मुख्तलिफ तरह से डाला। एक हदीस का खुलासा बता सकती हूँ इस वक्त, क्या आपने फरमाया कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर अल्लाह ताला उनको दौलत बढ़ा दे, सूरह रूम में भी आते ना कि अगर अल्लाह दुनिया में सबको दौलत देता लबगौ फिल अर्दी, बगावतें करते। कहा कोई बंदा ऐसा है कि अल्लाह उसका रिस्क बढ़ा दे तो सरकशी करे, जैसा अमूमन होता है, लेकिन कोई ऐसा भी बंदा है कि अगर अल्लाह उसकी दौलत छीन ले तो वो कुफर में पड़ जाए। ये बात है कि उसको देने में खैर है उसके ईमान की, अल्लाह ने इसलिए दी। कई पैसे के साथ बहुत नेकियां करते हैं, अल्लाह ने नेमते दी वो खूब लौटाते हैं, जन्नती होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह को पता है इनकी दौलत इनके लिए जन्नत का टोकन है। कुछ को दौलत दी जाए तो बिगड़ जाते हैं, और इसी तरह से कुछ को गमों के रास्ते ही जन्नत मिलनी है। तो ये अल्लाह ताला को पता है उसको किसके लिए क्या है। बस ये दुआ करें इन चीज़ों से गुजार कर अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। तो ये तस्वीर के दो मुख्तलिफ रुख थे जो हमने डिफरेंट एंगल से देखे। अब एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हमारे सामने है, اور وہ ہے کہ موت کے وقت ایک بندہ اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، موت یا دنیا سے رخصت ہوتے وقت کیا امید کا تعلق ہے. حضرت ابو ہریرہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق پورا اترتا ہوں، وہ جو مجھ سے حسن ظن رکھے گا میں اس پر کھرا اترتا ہوں. تو فکر ہی کیا، میں اکثر یہ حدیث پڑھ کے کہتی ہوں بس پھر میرا تو اللہ پہ بڑا اچھا گمان ہے، اب جو مرضی کرو. لیکن واقعی موت کے وقت اچھا گمان رکھنا یہ اچھے معاملے کی، اچھے خاتمے کی نشانی ہے. اگر آپ کہتے ہیں مجھے جنت مل جانی ہے، انشاءاللہ مل جائے گی، اور اللہ بندے کا مان کبھی نہیں توڑتا. پھر اسی طرح ایک اور روایت واصلہ سے ہے اللہ کے نبی سے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے حسن ظن پر کھرا اترتا ہوں، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے میرے ساتھ گمان رکھے. ان دونوں میں آپ دیکھیے امید و رجا کو مقام خوف پر ترجیح دی گئی ہے نا، ان میں یہ پتہ چل رہا ہے. اسی طرح امام کرمانی کہتے ہیں کہ اس نص کی روح سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ امید و رجا کے پہلو کو خوف و خشیت پر زیادہ، یعنی خوف سے زیادہ امید ہونی چاہیے بندے کے دل میں. علماء کرام نے اس ترجیح کو موت کی حالت کے ساتھ ہی مقید رکھا کہ موت کے وقت یہ ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، کیونکہ پیچھے ابھی تو ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ امید اور تمناؤں میں فرق ہی ہے، جھوٹی امیدیں یا سچی تمنائیں یا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت ٹھیک ہے یہ بات کہ ہاں اچھا گمان رکھو، لیکن زندگی میں صرف گمان سے بات نہیں بنتی، اس میں کوشش بھی کرنی پڑے گی. حضرت جابر کی ایک حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو وفات سے 3 دن قبل فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے کسی شخص کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن نہ رکھنے لگے. امام نووی، آپ کو کہتا کہ صحیح مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے، ان کا قول ہے، کہتے کہ یہ بات پسندیدہ ہے. کیا؟ کہ جان کنی کے عالم میں مبتلا انسان کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی تلقین کی جائے، اور اس کے اعمال حسنہ کا اس موقع پر اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے، تاکہ اسے اللہ کی ذات کے ساتھ حسن ظن کی یاد دہانی ہو جائے اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو. اس بات کا ان آداب و احکام میں شمار ہوتا ہے جو مستحب اور مستحسن ہے. وہی بات ہے کہ موت کا کسی کو دھمکیاں نہ دیں کہ اب لگے گا تجھے پتا اب کدھر تو جا رہا ہے. نہیں، اچھا گمان کریں. آپ کو اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے کیوں موت کے وقت اچھی باتوں کی امید کیوں دلائیں؟ کیا اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا؟ یہ بالکل وہی ہے کہ اب وقت تو نہیں رہا تو بچہ خوف زدہ ہے، تو آپ کہتے ہیں سب صبر کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا. اب موت کے وقت عمل نہیں ہے تو پھر امید ہی دلائیں گے نا. خوف کب دلائیں لوگوں کو؟ جب عمل کا بھی وقت ہے. وقت گزر گئے، آپ کہ اچھا انشاءاللہ بہتر ہوگا، دعا کرو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہی حسن ظن ہو، امید بھی ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیشہ انسان تیاری بھی رکھے. تو جب موت و حیات کی کشمکش ہو تو اس وقت امید کا پہلو غالب ہو. بعض اسلاف کی عبادت سنا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں انہوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے قرآن کریم کی آیات رحمت کی تلاوت کرنے کی فرمائش کی، تاکہ ان کی روح جستے حاکی سے اس حال میں پرواز کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں اور وہ اس بات کا عقیدہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں کن کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانپ دے گا اور ان کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے گا اور انعام و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کرے گا. کتنی اچھی بات ہے. تو واقعی جب کوئی مرنے والا ہو تو اچھی اچھی خوشخبریاں لگا دیجئے، شاید اس کو سن کر اس کو سمجھ لے کہ یہ کب ہوگا، جب اس کو سمجھ آ رہی ہوگی. امام شافی سے ان کے مرض الموت کے عالم میں دریافت کیا گیا، اے ابو عبداللہ آپ کا کیا حال ہے؟ یہ ان کی کنیت تھی. جواباً ارشاد فرمایا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ پر بہار فضا میں آنکھیں کھولی ہیں کہ میں دنیا سے رختہ سفر باندھ رہوں اور اپنے بھائی بندوں سے جدا ہو رہا ہوں، موت کا جام پینے کے لیے تیار ہوں اور اپنے برے اعمال کی بلا خیزی سے دوچار ہونے والا، خوف ہے نا اس وقت بھی، اور اللہ کی جناب میں حاضری دینے جا رہا ہوں. مجھے کچھ پتا نہیں کہ میری روح جنت میں جانے والی ہے جو میں اسے پیشگی مبارکباد دے دوں، یا جہنم رسید ہونے والی ہے جو میں ابھی سے اسے تعزیت کرنا شروع کر دوں. پھر آپ کی چشم فیض سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے یہ اشعار پڑھنے شروع کیے. شاعر بھی تھے امام شافعی، ان کے اشعار دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں. کہتے ہیں جب میرا قلب سخت ہو گیا اور اس میں پتھر جیسی سختی پیدا ہو گئی اور چاروں طرف سے میرے راستے تنگ ہو گئے، تو اے اللہ میں نے رجا اور امید کو تیرے عفو درگزر تک رسائی کا سہارا بنا لیا. اے میرے رب، جب میں نے اپنے گناہوں کو تیری بے پایا بخشش کے ترازو پر رکھ کر تولا، तो मेरे गुनाह भारी बरकम पहाड़ बनकर सामने खड़े हो गए, मगर मैंने तेरे अफ़्व दरगुजर को इससे कहीं ज्यादा अजीम शानो जलील कुल कदर पाया। इतनी प्यारे शार है। हदीस में है ना कि समंदर भरकर तुम गुनाहों के ले आओ, अल्लाह अपनी रहमत लेकर आएगा। तो दोनों चीजें एक्सट्रीम पे हैं। कहने वाला ये कह सकता है कि रिजाओ उम्मीद को जानता नहीं कि आलम में खौफो खशियत के पहलू पर क्यों तरजीह देगी, तो इसका जवाब इमाम नवी फरमाते हैं कि जब मौत की अलामतें जाहिर हो जाएं तो रजाओ उम्मीद का पहलू खुद ब खुद गालिब हो जाता है, या बनफ्से नफीस ये पहलू पैदा हो जाना तबई अमर है, क्योंकि खौफ व खशियत का मकसूद गुनाहों और कबीर चीज़ों से इज्तनाब है और इसका हदफ बंदगी और इताअत और इमाले साले की बहुसन खूबी इंजाम दही है। ये वही बात है जो अभी हमने की है कि आम जिंदगी में तो अमल करने होते हैं, इताअत करनी है, और हालत इख्तसार में इन तमाम चीज़ों की इंजाम दही का दरवाज़ा तो बंद हो गया। हालत इख्तदार में आप ये काम कर नहीं सकते, यानी मौत के वक्त अब ये काम कर नहीं सकते, तो जब आखिरी वक्त में इन कामों को अंजाम देना नामुमकिन हो गया है, तो इस वक्त जान कनी के वक्त में फिर अल्लाह की ज़ात से हुस्न ज़न ही करना है। तो इस मौके पर फिर बंदा अपने रब के आगे झुक जाता है, और इस वक्त पसंदीदा है कि बंदा अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखे और आजजी और मस्कनत के साथ अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दे। तो ये थी मौत के वक्त की बातें। दुआ कीजिए कि मेरी और आपकी मौत का वक्त जो आए तो उस वक्त हमारा हाल उम्मीदों वाला हो, और ऐसी उम्मीदें कि जो अबू बकर सिद्दीक को थी। रिवायात में आता है कि अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटों से कहा कि मुझे पुरानी चादरों में कफन देना, नई चादरें जिंदों के काम आएंगी। फिर आहिस्ता से आवाज में कहते हैं कि वैसे तो ये चादरें अभी थोड़ी देर में उतर ही जाएंगी। ये है उम्मीद। क्यों? उनको पता है कि जब कोई नेक शख्स दुनिया से जाता है तो उसके लिए खुशबुओं में बसा हुआ जन्नत का कफन आता है। तो ये उम्मीद आप और मैं भी रख सकते हैं, मौत के वक्त में इस किस्म की कैफियत बंदे के ऊपर हों जो उसके अल्लाह ताला से कुर्ब की अलामतें हैं, और ताल्लुक आज पैदा करना है और उसका फल मौत के वक्त टालना है। और ये जो मौत के वक्त में कलमा नसीब होता है ना, इसके बारे में इमाम इब्ने कय्यिम का कॉल है या इब्ने तैमिया, लेकिन मेरा ख्याल है इनका, कहते हैं कि कलमा तैयबा बंदा मोमिन के दिल में होता है। इमेजिन करें, ईमान वाले के दिल में कलमा होता है, मलकुल मौत को देखकर खौफ की वजह से जुबान पे आ जाता है, और जिसके दिल में कलमा नहीं है उस वक्त वो क्या कहेगा? मुझे अपनी धुनें सुननी है, मुझे इस वक्त भी कुछ और करना है, नाचना और फुदकना और गाना है। जो काम जिंदगी में किए होते हैं ना, मौत भी उन्हीं पे आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कमा तहयूना कमा तमूतून, जैसा तुम जियोगे वैसा मरोगे, और कमा तमूतूना जैसे मरोगे उसी तरह से तुम उठाए जाओगे। यानी सारी हदीस में क्या है कि जैसी जिंदगी वैसी मौत, तो जैसी मौत होगी वैसा हशर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बचा के रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।